الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کی آیت 14 کرنی، ہم نے پچھلے ویک میں جو آیات ہم نے کور کر لی تھیں 13 تک، اس کے اندر جو موضوع تھا، جو ٹاپک چل رہا تھا، وہ یہ تھا کہ کیا چیز ہے جو کافروں کو گمراہ کر دیتی ہے، کس چیز کے دھوکے میں وہ آ کے پھر ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم لوگ جس طرح مرضی جہاں مرضی چلے جاؤ گے، بالآخر تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے، وہ وقت ہوگا جو تم پچھتاؤ گے۔ پھر تو اب آیت 14 کے اندر ایک اصول کی بات کہہ دی گئی ہے، اور اس موضوع سے ریلیٹڈ یہ قرآن مجید کی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ آیات ہے، جس موضوع کو اللہ تعالیٰ ٹچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، زینا، مزین کر دیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے، دلکش بنا دیا۔ اس لفظ کو بھی پچھلے عرصے میں بھی ایک دو دفعہ گزرا ہوا لفظ، تب بھی ایکسپلین کیا تھا کہ جو اردو کا لفظ ہوتا ہے، لڑکیوں کا نام ہوتا ہے یا بیوٹی پارلرز کے بھی نام ہوتے ہیں، زینت، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ خوبصورت کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بہت زیادہ دلکش چیز کے لیے۔ اردو کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے، زیب و زینت، یعنی کہ خاص طور پہ جیسا کہ اگر دلہن کو تیار کیا جاتا ہے تو کیا ہے، جولری بھی ہے، زیب بھی ہے، زینت بھی ہے، خوبصورتی بھی اس کو کیا گیا ہے۔ کہ اسی دلہن والی اگزامپل کو یوں انڈرسٹینڈ کریں کہ ایک لڑکی، ایک آرڈنری لڑکی جو ہوتی ہے، اس کو وداؤٹ اس میک اپ کے دیکھیں، اور جب وہ دلہن بن کے آتی ہے تو وہ کس طرح اٹریکشن بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ کہ وہ ساری جو کانسنٹریشن اور اس کی جتنے بھی اس میک اپ نے اس کی جو بھی اس کے جو فیچرز تھے، ان کو کس طرح ابھار دیا، کس طرح ان کو بڑھا چڑھا دیا، کس طرح ان کو اٹریکٹیو بنا دیا۔ وہی لفظ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے کہ زینا للناس، لوگوں کے لیے بہت زیادہ دلکش بنا دی گئی ہے، اٹریکٹیو بنا دی گئی ہے، حب و شہوات، محبت اپنی خواہشات کی، شہوانی خواہش کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ وہی لفظ ہے۔ شہوانی خواہش کس لیے استعمال کرتے ہیں، کہاں استعمال کرتے ہیں خاص طور پہ لفظ؟ لسٹ فل ڈیزائرز، وہ ڈیزائرز جن کے اندر لسٹ ہوتا ہے، ان خواہشات کی، ایسی خواہشات کی کا تقاضا یا ان کو پورا کرنا، اس کی محبت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے۔ کس کس چیز کو کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ من النساء، عورتوں کی محبت، عورتوں کے لیے پھر مردوں کی محبت، والبنین، اور بیٹوں کی محبت، بیٹی کا ذکر نہیں کیا، جیسا وہاں پہ پہلے جو ذکر کیا جو جی زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہے اس کو، یہاں پہ بیٹوں کی محبت آگے کنٹینیو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کن کن چیزوں کی محبت ہے، باری باری ان چیزوں کو کور اپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا ہے کس پرپز کے لیے؟ آزمانا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ڈفرینٹ سیٹس آف چیزیں دی ہیں، جس ڈفرینٹ زمانے کے اندر ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ آزمایا جائے گا۔ ایک تو زمانہ وہ ہے نا کہ جب بالفرض بہت ساری چیزیں، ٹیکنالوجی کی چیزیں نہیں تھیں، تو ان لوگوں کو ٹیکنالوجی سے تو نہیں آزما سکے اللہ تعالیٰ، ان کو کسی اور چیز سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ آزمایا، جو ان کے لیے جو اس وقت ان کے حساب سے وہ چیز زیادہ ریلیونٹ لگتی تھی۔ ہمیں جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس زمانے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانا ہے، پلس اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کچھ خاص چیزیں، پوٹینشیل بھی رکھ دیں جو ہمیں اس کی طرف لے کے بھی جا سکتی ہے اور ہمیں اس سے بچا بھی سکتی ہے۔ تو اس کے اندر کی جو آزمائش ہونی تھی اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک خاص اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہمیں پیدا کیا، خاص زمانے میں پیدا کر دیا، ایک خاص ایج جس کے بارے میں مجھے نہیں پتہ وہ کیا ایج ہوگی، آپ کو بھی کوئی ہنٹ نہیں ہے اس بارے میں، لیکن ایک خاص ایج، یہ کنفرم پتہ ہے کہ ایک خاص ایج ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، مثال کے طور پہ 200 سال نہیں ہوگی وہ زندگی، میکسیمم جو ورلڈ ریکارڈ ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہم میں سے وہ توڑ لے، اتنی اللہ تعالیٰ کو زندگی دے دے، لیکن پھر بھی ایک پتہ ہے کہ ہاں اتنی لمٹ ہوگی۔ اس کے آس پاس کا کوئی ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، بتا دیا، بار بار ریپیٹڈلی قرآن کے اندر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں مسلمان گھرانے میں بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ ہمیں پیدائشی طور پہ ایک مسلم فیملی میں پیدا کر دیا، اور پھر اس کے ذریعے بار بار ہمیں قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے یہ فیڈ ان ہوتا رہا کہ یہ زندگی جو ہے یہ عارضی زندگی ہے، یہ وقتی زندگی ہے، ان میں سے کوئی چیز ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی آخرت میں، کوئی ڈگری کام نہیں آئے گی، کوئی ہمارا سی وی، کوئی ہماری اچیومنٹس، کوئی میڈلز، کوئی آنرس، کوئی ایسی چیز ہوگی وہ کام نہیں آئے گی۔ آپ نے اپنی باڈی کو جتنا مرضی ہیلدی بنا دیا، جتنا مرضی ہیلدی بنا دیا ہے، اس باڈی نے آگے آپ کے ساتھ نہیں جانا، اس نے ادھر ہی مر جانا ہے، چاہے آپ یوتھ میں مر گئے، چاہے آپ اپنے بالکل پیک ایج کے اوپر کسی حادثے کے ذریعے یا کسی اور بہانے سے مر گئے۔ مثال کے طور پہ کہ جو اسکول جو رن کرتا ہوں اس کے اندر ایک چند مہینے پہلے ایک ڈرائیور تھا ینگ ایج کا, صرف 25 یا 26 سال عمر تھی اس کی اور 5-6 مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی. تو وہ چھٹی گیا ویکینڈ کے اوپر اور اس کے بعد اس نے فون کر کے کہہ دیا کہ میں نہیں آ رہا. میں اس بات کے اوپر ناراض ہوا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ریزائن دینے کا. بہرحال وہ نہیں آیا تو ہارڈلی مہینہ نہیں گزرا تو پتہ لگا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کسی سے ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی, حادثہ ہوا, کیا ہوا ہے؟ تو کارڈیک اریسٹ ہوا ہے. تو کارڈیک اریسٹ, تو میں نے پوچھا کوئی نشہ کرتا تھا, کوئی بیماری تھی یا کوئی فیملی یا کچھ بھی نہیں, نہ بڑوں میں کسی کو مسئلہ تھا. یہ 25-26 سال کا لڑکا جس کے ابھی 7-8 مہینے پہلے شادی ہوئی, اچانک اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو کسی بھی ایج کے اوپر ڈیتھ ہو سکتی, ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپا ہم پائیں گے. کسی بھی ایج کے اوپر آپ نے اپنی فزیکل باڈی کو بہت اچھا رکھا ہوتا, جم جاتے تھے, ہر لحاظ سے رکھا ہوتا, کہ آپ کے ساتھ باڈی نے نہیں جانا تھا آگے. آپ کے پاس پیسہ, بینک بیلنس, وہ چیزیں جمع ہوتی جا رہی ہیں, یہ نہیں آگے جانا. یہ چیزیں کس کو نہیں پتا, کوئی آپ کو یہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں جائیں گی چیزیں یہ ساتھ, کوئی یہ نہیں کہے گا. ہر کوئی یہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے, واقعی بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ان میں سے کوئی چیز ہمارے ساتھ آگے نہیں جانی. لیکن پھر بھی ہم کیوں اتنے غفلت میں ہم لوگ کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے ہمارے ارد یہ چیزیں رکھی ہیں نا, تو ان کی اٹریکشن پیدا کر دی ہے ہمارے اندر. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو شامل کیا ہے, ان میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ عورتوں کی محبت, بیٹوں کی محبت. والقناطیر, قناطیر کہتے ہیں ڈھیر کو, والمقنطرہ, مقنطرہ بھی ڈھیر کو کہتے ہیں. دونوں لفظ جو ہیں وہ ایک ہی روٹ ہے دونوں کا, کاف نون تا دونوں لفظوں میں نظر آ رہا ہے. قناطیر مقنطرہ, ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوئے, من الذهب سونے کے, والفضۃ چاندی کے. ایک آسان حل اس کو یاد رکھنے کا یہ ہے, کوشش کرتا ہوں اس طرح کے ٹپس بتاتا رہوں آپ لوگوں کو. ایک لڑکیوں کا نام ہوتا ہے فضا, فضا کا مطلب ہوتا ہے سلور کو کہتے ہیں, چاندی کو کہتے ہیں. تو ڈھیر لگے ہوئے سونے اور چاندی کے. والخیل اور گھوڑے, مصومت وہ جو کہ بہت زیادہ کھاتے پیتے اور ہیلدی اور تگڑے اور بھاگ دوڑ کرنے والے. والانعام اور جانور, والحرث اور کھیتی. یہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے گنوا دیا, ایکسپلینیشن میں آگے دوں گا. ان چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دی ہے اور سجا دیا, یہ دلکش لگتی ہیں اسے. سونا چاندی کے اوپر کتنے زمانے کے اندر آپ خود سوچیں, جب سے یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں, انسان پیدا ہوئے ہیں, سونا چاندی کے جھگڑے کے پیچھے, مال کے پیچھے کتنے لوگ قتل ہوئے ہوں گے. ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر حملہ کیوں کیا کرتے تھے پہلے؟ ایک بادشاہ نے دوسرے علاقے میں کیوں حملہ کیا؟ انہیں چیزوں کے پیچھے کیا کرتے تھے نا. کتنے لوگ قتل ہو گئے اس کے پیچھے؟ ان کی محبت ڈالی اللہ تعالیٰ نے. اب مثال کے طور پہ یہ کہ آپ سونے اور گولڈ اور جیولری جو ہیں ان تمام چیزوں کو یہ لان کے اوپر بکھیر کے رکھ دیں, یا باہر راستے کے اوپر آپ ڈھیر لگا کے ان کو رکھ دیں, یہ تو چانس ہوگا کہ کوئی بندہ آئے گا اٹھا کے لے جائے گا, کوئی چوری کر لے گا وہ. لیکن یہ تو نہیں ہوگا نا کہ بلی اٹھا کے لے جائے گی, کوئی کوئی جانور اٹھا کے لے جائے گا. ان کے اندر تو کوئی اٹریکشن نہیں ہے نا ان چیزوں کی, ان کے اندر تو اس چیز کی کوئی اٹریکشن نہیں پیدا ہو رہی کہ یہ کوئی خاص چیز ہے. حالانکہ گولڈ سے نہ تو میری صحت میں اضافہ ہو رہا ہوگا, نہ میری زندگی بڑھ رہی ہوگی, نہ میری ذہانت میں اضافہ ہو رہا ہوگا, نہ میری آنکھیں تیز ہو رہی ہوں گی, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوگا ان چیزوں سے. اور اسی طرح جس طرح وہ فزیکلی مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا, اس طرح کسی اور جانور کو, کسی اور چیز کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا وہ. لیکن ہمارے اندر کیا ہے, اس چیز کی محبت کھبا ماری گئی ہے. اگر یہ کھبنا نہ ہوتا پھر تو دنیا کی زندگی اور اس کی آزمائش جو تھی یہ تو پھر پیس آف کیک ہوتا. پھر جس طرح ہمیں باہر مٹی پڑی ہوئی, ہمیں کوئی اٹریکشن نہیں ہو رہی تھی کہ مٹی کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے, گھاس گھوس پڑی ہوئی ہمیں کوئی اٹریکشن نہیں ہے. اگر اب آپ بکری شکری چھوڑیں گے تو ادھر ہی بھاگ کے جائے گی وہ. ہم بلکہ محاورے میں بھی کیا کہتے ہیں, گھاس تک نہیں ڈالی اس نے اسے, بالکل کیئر تک نہیں کرنا اس چیز کے بارے میں. اگر تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دلکش نہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کی طرف تو کوئی پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہاری جو کریشن ہے نا, اس کے اندر اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. یہ کہا نہیں جا سکتا اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے اندر ان میں سے کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے, ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کو فطرت کے اعتبار سے کسی ایک چیز کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے, کسی ایک چیز کی طرف کم ہوتا ہے. میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا, لیکن یہ جو گھوڑوں کا ذکر ہے, انعام جانوروں کا ذکر ہے, ہرس کا ذکر ہے, اس چیز کو آپ آج کل کے حساب سے ڈیوائڈ کریں کہ آج کل کے حساب سے گاڑیوں کا شوق ہو گیا, آج کل کے حساب سے برانڈز کا شوق ہو گیا, بڑے بڑے بزنس کے یا بزنس کے اکاؤنٹ یا ایسٹس یا بلڈنگس, وہ تمام چیزیں जो इंसान को दिलकश लगती हैं, वो तमाम चीज़ें। हाँ, ये हो सकता है कि एक बंदा जो है बिलफर्ज वो लड़कियों की तरफ उतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना उसके अंदर माल और दौलत की लालच है। ये हो सकता है कि जिसके अंदर माल और दौलत की चीज़ों की लालच नहीं है लेकिन उसको इन चीज़ों का बड़ा शौक है कि वो मोटर शोज, कार शोज, ये चीज़ें बड़े शौक से वो देखता है। तो वेरिएशन ज़रूर हो सकता है कि किसी एक चीज़ की तरफ ज़्यादा मिलान है उसकी नेचर की वजह से, जिस तरह अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया है, एक चीज़ की तरफ कम मिलान है। लेकिन ये कह देना कि है ही नहीं मिलान, दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। और इस चीज़ की वजाहत की है रसूलुल्लाह सल्लम ने कि आप सल्लम ने यह फरमाया, और ये ईमानदारी की इंतहाओं में से एक है कि आप सल्लम ने यह बात कह दी कि इस तरह की आयात की वजाहत करते हुए कि दुनिया की चीज़ों में जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा मेरे अंदर अट्रैक्शन है वो उन्होंने ज़िक्र कर दिया कि वो औरतें हैं और खुशबू है, ये चीज़ें मुझे पसंद हैं। अब इसको मैं अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से बताऊँ, मिसाल के तौर पर मुझे खुशबू के अंदर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई सुंघाता भी है। अब मेरे फादर जो हैं उनको बहुत उसकी पहचान होती है, ये अच्छी खुशबू है ये बुरी है, वो मुझे कोई बुरी से बुरी भी पहचानते हैं, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी है, और कोई बुरी अच्छी से अच्छी कहता हूँ, मैं कहता हूँ कोई खास नहीं है, मेरे अंदर इस चीज़ की पहचान नहीं है। लेकिन जिस बंदे को होगी, पसंद होंगी ये चीज़ें, उसको बहुत कुछ पता होगा ये कौन सा है, इसका ये एक नंबर है, दो नंबर है, क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता उसका एक नंबर क्या है, दो नंबर क्या है। इस चीज़ की वजाहत कर दी रसूल सल्लम ने कह के कि मेरे अंदर दुनिया की चीज़ों में अगर मेरे अंदर कोई चीज़ है, मेरे अंदर इंक्लिनेशन पैदा होती है तो इन दो चीज़ों की तरफ पैदा होती है। अल्लाह ताला ने सूरह हदीद की आयत 20 के अंदर फरमाया हुआ है, ए लमु, अच्छी तरह जान रखो, इन नमल हयात दुनिया, कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, लाइबुम व लाव, ये सिर्फ एक खेल तमाशा ही है। खेल तमाशा यहाँ पे क्यों कहा गया ऐसे, उस सेंस के अंदर कि इस चीज़ का जो रियल लाइफ आखरत वाली है इसका उस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जैसे मिसाल के तौर पर रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि इंडिया पाकिस्तान के हालात हमें पता है, पावर्टी के क्या हालात है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, दोनों एक दूसरे को तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है वो लाइबों व लाभ है, वो एक खेल तमाशा है, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हुआ होता है उस वक्त का मैच, सड़कें खाली हुई होंगी, लोग जो है ना वो दाव पे लगा के बैठेंगे, मूड ख़राब हो जाएगा लोगों का, रोना शुरू हो जाएंगे, लड़ना शुरू हो जाएंगे। इंडिया के अंदर तो आपको ये पता है कि इवन जब अगर पाकिस्तान जीत गया तो वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के वो एक आध मुसलमान भी मार देते हैं, वो इस कदर वो हद हुई होती है उस चीज़ की, जबकि वो रियलिटी नहीं है। वो करने से, वर्ल्ड कप जीतने से या एक दूसरे के खिलाफ मैच जीतने से कोई गुर्बत ख़त्म नहीं हो गई आपकी, ग्राउंड रियलिटीज़ में कोई तब्दीली नहीं आई। तो इसी तरह अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी तुमने कमा के लिया, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये लाइबुम व लव व जीनत, और वो जीनत है दुनिया की, यही चीज़ है लाइबुम व लव जो है, खेल तमाशा जो है, ये सारी जो अट्रैक्शन है उसकी डिग्रीज हो गई और उसकी जो बिजनेस हो गए, जॉब्स हो गई, और जो उन चीज़ों के अंदर भी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जीनत है, ये दुनिया के ऊपर इसकी वजह से डेकोरेशन है। जैसे दुल्हन की मैंने बात की कि कोई भी आम लड़की जिसके ऊपर जब मेकअप होगा, दुल्हन वाले कपड़े पहनेगी, वो पार्लर से होके आएगी, अब वो जिस तरह अट्रैक्टिव हो गई है, इसी तरह दुनिया के ऊपर और दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों से सजाया है। फ़ख्र, और फ़ख्र करने की चीज़ है, बैनकुम, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर तुम फ़ख्र करते हो कि मेरे पास, मैंने ये हासिल कर लिया, मेरी ये अचीवमेंट है। फ़तकासर, और कसरत फिल अमवाल वल औलाद, और माल और औलाद की कसरत, इसके ऊपर तुम लोगों को बहुत एक दूसरे के ऊपर भाग दौड़ रेस लगी होती है इस चीज़ के ऊपर, जबकि ये अल्लाह ताला ने बता दिया कि इनमें से कोई चीज़ जो है वो आखिरत के अंदर किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों की एज के अतबार से इसमें जो सबसे बताने वाली चीज़ है ना, वो सबसे पहला पॉइंट है, ऑपोजिट सेक्स की अट्रैक्शन। बाकी जो बेटों का जिक्र हो गया और सोने और चांदी और घोड़ों का, और ये अभी एज के हिसाब से आप लोगों के ऊपर, वो वक्त भी आने वाला है आप लोगों के ऊपर, लेकिन अभी आप लोगों के हिसाब से वो पहला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो डेडिकेटेड होगी उस पहले पॉइंट के ऊपर, कुरान की आयत नहीं होगी बल्कि उस पॉइंट को मुख्तलिफ तरीक़ों से मैंने एक्सप्लेन करना है। और आप स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट जो कोई पर्सनल क्वेश्चन आके पूछते हैं, उनमें से उसका आंसर काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कवर अप हो जाए, वो ज़रूरी है। तो अभी जनरलाइज करके इन तमाम बातों को हमने कवर करना है। तो जिस अल्लाह ने पैदा किया उसी अल्लाह ने इस चीज़ की अट्रैक्शन हमारे अंदर डाली है, ऑपोजिट सेक्स की अट्रैक्शन होगी, डेफिनेटली होगी, चाहे कोई बंदा अपने ज़ुबान से कहता है या चाहे नहीं कहता, शर्म की वजह से वो नहीं कहता या वो कहता है, ये है, ये अल्लाह ताला ने इंटेग्रल पार्ट रखा है। ये भी ऐन मुमकिन है कि कोई एक लड़की जो कि बहुत ज़्यादा शाय भी हो, अबाया भी लिया हुआ है या नकाब भी किया हुआ है या जैसा मर्जी उसका है, यूनिवर्सिटी में आपको कोई उस लड़कों से बात करती हुई नज़र ना आए, लेकिन ऐन मुमकिन है कि उसको भी किसी के ऊपर क्रश हो, वो भी किसी प्लेयर के ऊपर या एक्टर के ऊपर या सिंगर के ऊपर उसका हो और वो उससे रिलेटेड उसने अपनी कलेक्शंस की हुई हो। इसी की एक्सप्लेनेशन के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही बुखारी की किताब निकाह की हदीस है 5098, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तरकु बादी फितनतन, मैं अपने जाने के बाद ऐसा कोई फितना नहीं छोड़ के जा रहा, अज़र्रा अलर रिजाल, जो मर्दों के ऊपर उससे ज़्यादा भारी होगा, मिन निसाए, औरतों की चाहत से या औरतों की अट्रैक्शन से ज़्यादा बड़ा फितना जो है वो मर्दों के ऊपर मैं नहीं छोड़ के जा रहा। तो उनके लिए ये फितना होगा, आजमाया जाएगा इसके ज़रिए। वल बनीन, बेटों की मोहब्बत, बेटों के लिए चाहत। अब औलाद की मोहब्बत जनरली होती है और ख़ास तौर पर जिस ज़माने में ये कुरान की आयात नाजिल हुई थी और उससे पहले जो ज़माना गुजर चुका था, जब पुलिस नहीं होया करती थी, जब कोई इस तरह की फॉर्मल आर्मीज़ नहीं होती थी, कोई इस तरह का नहीं होता था कि ये अदालतें हैं हमारी, रिकग्नाइज अदालतें हैं, यहाँ पर जाके आप ये कर सकते हैं उस तरह, तब ताकत की अलामत क्या समझा जाता था? माल, जानवर और औलाद, औलाद में बेटे, बेटे मुराद होती थी उससे, जिसके जितने ज़्यादा जवान बेटे होते थे उसको उतना ज़्यादा समझा जाता था कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। और यही तो वो वजह है जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना मजाक उड़ाया जाता था कि ये जो बात कर रहे हैं कि ये क़यामत तक के लिए दीन है वगैरह, क़यामत दूर की बात, इनका तो अपनी अगली नस्ल नहीं चलने वाली, इनका अगले कोई औलाद तक नहीं है, बेटा तक नहीं है इनका, तो वो बेटे की मोहब्बत ये थी। अब वो ज़ाहिर बात है अब इसकी वो लेवल नहीं रहा, हाँ अभी भी होगा, डेफिनेटली होगा, इस बात को मैं इस तरह करके ज़रूर एक्सप्लेन करता हूँ कि वो फैमिली जिनके यहाँ सिर्फ बेटियाँ हों, या तो बे औलाद हों या सिर्फ बेटियाँ हों, उनका पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, उनके प्लान्स ऑफ लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और उसी फैमिली को जब अल्लाह ताला बेटा अता कर देता है तो उनके बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं प्लान्स। आप लोगों ने बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी देखी होंगी कि जिनके यहाँ बिलफर्ज एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 4 या 5 बहने हैं वो और एक भाई है छोटा, ठीक है अल्लाह ताला की तरफ से औलाद मिली, लेकिन इससे क्या समझ लगता है? फैमिली ने, पेरेंट्स ने प्लान ही इस तरह किया कि वो बेटे के ख्वाहिशमंद थे, जब तक बेटा नहीं आया तब तक वो अल्लाह ताला से मांगते रहे, जब बेटा मिल गया, अल्लाह ताला ने उनको अता कर दिया बेटा, तो उसके बाद वो उन्होंने रोक दिया, अपने फैमिली प्लानिंग के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। तो इससे अभी भी उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते। और जिस तरह मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी को औलाद, बेटा नहीं दिया अल्लाह ताला ने और अब उसको बाद में बेटा मिल जाए, तो उसके प्लान्स ही चेंज हो जाते हैं। पहले वो कहेगा मैंने क्या करना है, मैंने किसके लिए कमाना है, या मैंने किसके लिए इतना कुछ जमा करना है, या क्या फ़ायदा, बेटियों ने तो अपने घर चले जाना है। उन्हीं को अल्लाह ताला जब बेटा अता कर देता है तो उनका पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ ही चेंज हो जाता है कि वो उस हिसाब से भी प्लान करना शुरू हो जाते हैं कि एज इफ कि हमें एक सेकेंड लाइफ मिलेगी, हमारी लाइफ एक्सटेंड हो गई है, कि अगर हम नहीं होंगे तो ये बेटा काम करता रहेगा, कंटिन्यू करेगा, वो फिर बीज इस तरह बो के जाते हैं कि आगे इसने कंटिन्यू करना है। वो और बात है कि बेटे बड़े होंगे तो बेटे बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे, बेटियाँ फिर भी ख्याल रखती हैं पेरेंट का, बेटे बिल्कुल ही लापरवाह किस्म के होंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन उनके अंदर इस चीज़ की मोहब्बत डाल दी अल्लाह ताला ने। पेरेंट्स कितने साल अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या एज होगी जब पेरेंट बन जाते हैं वो? 27, 28, 29 ये एज होगी ना, समथिंग बिटवीन 26 से लेके 30 की एज में पेरेंट बन जाते हैं वो ऑन एवरेज। अब उसके बाद से लेके कब तक, वो क्या एज होती है जब वो तसव्वुर किया जा सकता है कि ये कुछ हमें इन रिटर्न करेगा? उसकी लड़की की एज तकरीबन इतनी हो चुकी होगी, 23, 24, 25 साल हो चुकी होगी, 22-23 साल तक तो वो पढ़ाई ख़त्म होगी, अभी तक उसके ऊपर लगा रहे हैं, बाद में उसी को कहीं सेटल कराने के लिए कोई रेफरेंस होगा या बाहर भेजना है उसे, वो तकरीबन 25 साल का होगा तब जाके तसव्वुर कि शायद ये हमें रिटर्न करेगा। कितने साल उन्होंने इन्वेस्टमेंट की औलाद के ऊपर, कितनी रातें वो जागे उसके लिए, जब कितने बार बीमार हुए होंगे तो जाके चेक करवाया होगा, कितना पैसा उसके ऊपर लगा होगा, कितनी प्लानिंग होंगी, इस महीने हमने ये करना है, औलाद के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो सारा पैसा उधर लगा लिया, प्रायोरिटी हमेशा औलाद को रखा है। जो लोग नमाजें नहीं पढ़ते, कोई फजर की नमाज नहीं, तहज्जुद दूर की बात, फजर तक नहीं पढ़ी कभी उठ के, उनसे कहो तो उठा नहीं जाता फजर के वक्त, ये नहीं होता, फलाना नहीं होता, जब औलाद बच्चा कोई रोता है तब क्या होता है? तब कोई देखता है कि बिस्तर अभी उतनी सर्दी है, बिस्तर हमारा गर्म है, या अभी पता नहीं बाहर कितनी ये होगा, कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है? रात के 1 बजे 2 बजे नींद डिस्टर्ब कितनी हो रही है, कोई केयर करता है, कोई कैलकुलेट करता है उस वक्त? बिल्कुल भी नहीं करते. उनकी आवाज़ सुनते साथ ही एकदम से उठ पड़ते हैं और भागते हैं, देखते हैं क्या हुआ क्या उन्हें, किस चीज़ के ऊपर रो रहे हैं या क्या हुआ क्या, किस चीज़ ने उनको परेशान किया. इतनी पूरी लाइफ की जो इन्वेस्टमेंट होगी, अपना पीक टाइम जो था, क्योंकि वो उनका जो टाइम था, वो जो 25-26 से लेके 30 साल 35 साल की एज तक, जब तक बच्चा बिल्कुल ही वो उस टाइप की एज में होता है कि उसको बाथरूम भी लेके जाना पड़ रहा है, उसको नैपी भी उसका साथ चेंज कराना पड़ रहा है, उसको एक एक नवाला मुंह में डालना पड़ रहा है, उसके एक एक चीज़ के ऊपर अपने टाइम का उन्होंने कितना पीक इन्वेस्ट किया होता है. और नज़र आ रहा होता है कि हम रेशियो अगर कैलकुलेट करना चाहें कि कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप के साथ उसको रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट इंसाफ के साथ. अक्सर तो बाहर चले जाते हैं, पेरेंट्स नहीं रोकते, ये भी उनकी मोहब्बत होती है औलाद के लिए कि वो उसको नहीं रोकते कि जहाँ तुम खुश हो. तो ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला ने इस चीज़ की मोहब्बत डाल दी है. इतना वन साइडेड लव क्यों है? अल्लाह ताला ने इस चीज़ की मोहब्बत डाल दी है. इसका ज़माना बहुत लंबा है. वो जो पहला पॉइंट था ना, उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट होती है. जो सेकंड पॉइंट है, बेटों की मोहब्बत, इसकी ड्यूरेशन काफ़ी लंबी होती है, बहुत लंबी होगी, आधी ज़िंदगी इसको कवर कर लेगी. आगे अल्लाह ताला ने कह दिया वल कना तीर मुकंतरा, ढेर पे ढेर लगे हुए. दोनों का मतलब ढेर होता है, ये सिर्फ एम्फेसिस देने के लिए. जैसे तरह वो जो सूरह बकरा के जब वो आयत गुजरी थी, इसके अंदर गाय का ही जिक्र था, तो वो उसके रंग से मुतालिक, तब मैंने एग्जाम्पल, तो खैर बहुत साल गुजर गए उस बात को, तब मैंने एग्जाम्पल क्या दी थी, जिस तरह हम लोग उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं काला स्याह. काले का क्या मतलब होता है? ब्लैक. स्याह का क्या मतलब होता है? ब्लैक. लेकिन हम कब देते हैं उसे? बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना चाह रहे हैं उसे, यानी कि ऐसा कोई ब्लैक जिसके अंदर कोई और शेड है ही नहीं. बिल्कुल काला स्याह लफ्ज़ इस्तेमाल तब करते हैं जब हम कहना चाहते हैं कि उसके अंदर कोई और शेड है ही नहीं किसी किस्म का. तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर अल्लाह ताला एक ही लफ्ज़ को दो दफ़ा दोहरा रहे हैं, ढेर पर ढेर लगे हुए सोने के और चांदी के. जो करेंसी और बैंकिंग से रिलेटेड लेक्चर्स होते हैं उसके अंदर तो मैंने बताया था, ये तो अब नोट शोट जो भी हैं, ये तो रसीदें हैं सिर्फ, ये तो कागज़ हैं. ये उसके बावजूद जो है, कभी आप अगर आपके हाथ अगर आपके हो, आप देखें उसे, नए नोटों की दत्ती, 5,000 के नोटों की दत्ती है, नए नोटों की दत्ती हो डॉलर्स की उस चीज़ की, तो दिल तबीयत साफ खुश हो जाती है उसको देख के. तो जो सोने और चांदी के होया करते थे उस वक्त के ढेर, जब कभी शादी होती है किसी की, तो पेरेंट्स ने क्या किया होता है, पूरे साल का एज भर की गोल्ड कहीं ले के रखा होगा, संभाला के रखा होगा, दिखाते तो नहीं है ना ऐसा. जब लड़की की शादी होने के करीब होती है या लड़के की शादी हो रही हो, कहते हैं कि ये बहू के लिए हमने सेट रखा हुआ है, जब मेहमानों को दिखाते हैं तो कैसी आंखों में चमक आ रही होती है, बहुत प्यारा है ये, हाँ ये देख लें आप, अगला भी आ रहा हो, बहुत प्यारा है ये. तो वो जो ये देखें, ये जो क्या चीज़ होती है ना कि आपने थोड़ी पहनना है उसे, जो आप इतना ज़्यादा उसके ऊपर वो हो गए हैं, ये उस चीज़ की जो ग्लिटरिंग चीज़ है ना, वो उस चीज़ की इस कदर अट्रैक्शन है. दुबई के अंदर एक होटल है, उन्होंने आईपैड ऑर्डर किए थे अपने कस्टमर, यानी कि जितने रूम्स हैं उसके हिसाब से आईपैड ऑर्डर किए थे स्पेशल एप्पल को कह के, गोल्ड के. हालांकि उससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी क्या? बंदे ने आईपैड को स्क्रीन देखनी होती है या उसकी बैक साइड देखनी होती है? लेकिन वो इस कदर इस चीज़ की अट्रैक्शन. कभी आप ये खासतौर पे जो अरबों की और ये सऊदी बादशाह के देखें, वो सोफे और जो कुछ भी होता है, लगता है कि हर चीज़ उनकी वो गोल्ड गोल्ड उस चीज़ की बनी हुई है. वो तो सोने और चांदी के जो ढेर लगे हुए हैं, इस चीज़ की इंसान के अंदर मोहब्बत डाल दी है, खुबा दी गई है इस चीज़ की मोहब्बत. ये अननेचुरल नहीं है, ये नेचुरल मोहब्बत है. वल खैल मुसव्वमा, फ़र्श का लफ्ज़ भी कुरान के अंदर आता है और ज़्यादातर घोड़े के लिए वही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. खैल उस किस्म के घोड़े के लिए कहते हैं जो मेल घोड़ा ज़्यादा मस्कुलर हो, स्पोर्ट्स वाला या जंगों वाला जो घोड़ा होता था, ये उसके लिए ज़्यादातर लफ्ज़ होता है. वो ऐसा जो कि निशान लगे हुए घोड़े, तर्जुमे के अंदर इसको किया जाता है निशान लगे हुए घोड़े, जिस तरह पेडिग्रीज होती हैं, कैवलरीज होती हैं. उस ज़माने के हिसाब से भी ये अट्रैक्टिव चीज़ थी, और इवन अभी भी आपको पता है कि अब ऐसे सच घोड़ों की कहाँ ज़रूरत होती है, लेकिन आर्मी ने रखे होते हैं ना, पुलिस के पास भी होते हैं घोड़े. और ये जो हमारे जितने भी अरब शेख हो गए या आसिफ अली ज़रदारी के ऊपर भी जो स्कैंडल्स बने थे वगैरह, उसमें क्या थे, इतने महंगे महंगे घोड़े थे, करोड़ों घोड़े हैं, और ये है क्या घूम कर घोड़ा ही है ना एक वो, लेकिन वो इतने जो उनकी वैल्यू थी और जो कुछ भी था, या जो ये जो होती हैं बैट्स लगती हैं और रेसें लगती हैं घोड़ों की लगती हैं, उसके अंदर भी घोड़ों की नस्ल का भी हिसाब होता है कि ये किस नस्ल का घोड़ा है और उसकी कितनी एज है और क्या है, कितने उसके अंदर ये जीत चुका है, वो तमाम चीज़ें, उन चीज़ों की अट्रैक्शन. आजकल के हिसाब से ये ज़्यादा अप्लाई होगा किन चीज़ों के ऊपर, जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, या जो ज्यादा अमीर लोग हैं, बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, एक तो वो हो गया ना कि मोटरसाइकिल कौन बंदा रखता है जो बेचारा गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, सही है। लेकिन उसके अंदर नेक्स्ट लेवल के ऊपर बाइक्स, वो जो हैवी बाइक्स, पावर बाइक्स होते हैं वो, या हार्ले डेविडसन वाले हाई, वो देखिए ना जो बड़े से होते हैं, वो इसलिए नहीं बाइक लेते कि वो गुर्बत की वजह से ले रहे होते हैं, वो शौक होता है उस चीज़ का, इतने हज़ार सीसी का ये बाइक है वो। या इवन बाइसाइकिल्स जो होती हैं, अब हमारे बाइसाइकिल जो हो गई या जो माउंटेन बाइक वगैरह हो गई, बाहर जो हैं, इधर भी होगा डेफिनेटली, लेकिन एटलीस्ट बाहर के जो मॉल्स के अंदर जो बाइसाइकिल्स होंगी उनमें दो दो लाख की, तीन तीन लाख की भी साइकिल्स होती हैं, कि ये उसकी एल्युमिनियम मटेरियल की है या ये फलाने जो है ये फाइबर की है, इतनी लाइट वेट आप दो उंगलियों से उठा सकते हैं। हालांकि आपने कितनी बार उठाना होता है उसे, आपने तो, उसने आपको उठाना होता है, आपने तो नहीं उसे उठाना। हाँ, अगर पंचर हो गया तो और बात है। वो जो चीज़ें हैं वो लग्जरी में भी आ जाती हैं, यानी कि मोटरसाइकिल अब हर दफ़ा जो है वो ज़रूरत नहीं होगा, लग्जरी भी है वो। तो गाड़ियों का हो गया, फिर गाड़ियों के अलावा लोगों के पास हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, अपने हेलीकॉप्टर्स हो गए, नवाज शरीफ के पास हेलीकॉप्टर है, इमरान खान के पास हेलीकॉप्टर है, बाकियों के पास भी होंगे, कोई गिनती तो नहीं की भी, खैर हमने। इसी तरह ही एरोप्लेन्स, प्राइवेट एरोप्लेन्स भी होते हैं, और उसके इंतहा जो है जिस तरह सऊदी अरब का जो प्रिंस वलीद है, जो बेसिकली तो फ्रांस में रह रहा होता है, सबसे बड़ा एरोप्लेन जो बना है वो बना है A380, जो डबल डेकर है, फुल एरोप्लेन डबल डेकर है, यानी कि वो यहाँ पे पाकिस्तान में आ भी नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट के अंदर उसको पार करने का और उसको फैसिलिटेट करने की इक्विपमेंट नहीं है, ऐसे एयरपोर्ट के ऊपर चीज़ें नहीं है। वो दुनिया के चंद एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे वो लैंड कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है, ह्यूज एरोप्लेन है वो। तो उसके ऊपर ठीक है एमिरेट्स एयरलाइन ने ऑर्डर कर लिया, बाकी एयरलाइन ने ऑर्डर किया, प्लस इनिशियल ऑर्डर्स में प्रिंस वलीद ने प्राइवेट अपना ऑर्डर किया था, और उसका सारा इंटीरियर जो है वो उसने चेंज किया हुआ है, वो उसका है फ्लाइंग पैलेस कहते हैं उसे, जिसके अंदर क्या है कि उसके अंदर उसका स्विमिंग पूल भी है, तो उसके अंदर उसने लाइब्रेरी भी अपनी रख ली है, तो उसके अंदर उसने बहुत बड़ा टीवी स्क्रीन भी लगा लिया है वो। ये सिर्फ क्या है, सिर्फ उस चीज़ की मोहब्बत के हमारे पास, हमारा नाम इस चीज़ के अंदर आया कि हम लोगों ने ये चीज़ अचीव किया, मेरा ऑफिस भी है उसके अंदर, मेरा लाइब्रेरी भी, उन्हें कौन सी किताबें पढ़नी होंगी उसके अंदर, लेकिन सिर्फ एक वो दिमाग का खलल। तो ये जो चीज़ें जमा की हुई उसके अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। निशान लगे हुए घोड़े के हिसाब से आ गया, आजकल के हिसाब से क्या है कि ब्रांड्स के हिसाब से, मिसाल के तौर पे एक टोयोटा की गाड़ी है कैमरी, कैमरी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो ब्रांड न्यू है ना वो 1 करोड़ से ऊपर की आती है, हालांकि उस गाड़ी की स्पेक्स क्या है, सिर्फ 2400 cc है, वो पीछे जो है 5 सीटर काउंट होती है, जो टोयोटा करोला जो हो गई ये 4 सीटर काउंट होती है ना, वो 5 सीटर काउंट है, उसको आप कर लेंगे, दरमियान के अंदर भी बैठ सकते हैं, पीछे एसी के वेंट्स होंगे, दैट्स इट। अरब कंट्रीज के अंदर तो वो टैक्सी के तौर पे यूज़ हो रही होती है, 1 करोड़ रुपए की यहाँ की उसकी प्राइस है वो। फिर ये जो गाड़ियाँ, बाकी जो दूसरी गाड़ियाँ होती हैं, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर शोरूम है पोर्शे का, अब पोर्शे की जो स्टार्टिंग रेंज है ना वो रोड से ऊपर गाड़ियाँ शुरू होती हैं वो। अब पोर्शे क्या है, वो 2 सीटर होती है, वो स्पोर्ट्स कार होती है, 2 सीटर होती है वो, ये नहीं कि फैमिली बच्चे भी बैठे हुए हैं उसमें, वो नहीं है, 2 सीटर। पाकिस्तान के अंदर कौन सी सड़कों के ऊपर चला सकते हैं आप, अब स्पोर्ट्स लेके निकले साथ ही पता, पहले तो रूट लगा हुआ है आगे आपके, फिर आगे वो रूट के बाद जो ट्रैफिक फंसी हुई है वो कहाँ पर आप चला सकते हैं उसे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वो गाड़ी जो है उसकी सेल्स हो रही हैं, ऑडी के भी शोरूम है, मर्सिडीज़, इन तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम है ये, जो गाड़ियाँ जो हैं ये हैं हमारे हिसाब से अरबों रुपए के हिसाब से हैं। तो ये इन चीज़ों की जो पसंद है वो, एक गाड़ी अगर बाहर कहीं खड़ी हो ऐसी, कोई पोर्शे खड़ी हो, कोई ऑडी खड़ी हुई हो, या कोई और फॉक्सवैगन की गाड़ी हो, जो कि खैर यहाँ पे तो उतना लोग नहीं उस चीज़ को जानते, या BMW की हो, तो लोग कैसे आगे पीछे उसको देख रहे होंगे ना, झांकी मार के भी देख रहे होंगे कि क्या है क्या है, वो कितने बड़ी फिट गाड़ी है ये, और क्या साहब है। एक दफ़ा हुआ था, पुरानी बात है, जब मैं मैट्रिक में था या 9th-10th में, तो साइकिल के ऊपर मार्केट गया था कुछ चीज़ लेने के लिए, रमज़ान का टाइम था, वहाँ पे मार्केट में गया हूँ ना, तो एक लड़का आया, उस अरे बात है वो उस टाइम पे जब मेरी एज होगी कोई 15-16 साल या इसके आसपास होगी, तो उनकी एज होगी 25 के आसपास होंगे, बड़े सही मस्कुलर किस्म के जिम शिम जाने वाले, वो मेरे पास आए, कहते हैं कि मुझे आपकी साइकिल चाहिए ना। मैंने कहा क्यों, और वो थे, और वो खुद बैठे हुए थे पावर बाइक के ऊपर, क्यों आपके पास तो ये पावर बाइक है, मैंने समझा शायद मुझे देने लगे, एक्सचेंज करने लगे मेरे साथ वो, तो कहते हैं असल में इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया, मैंने पेट्रोल लाना है इसका ना, तो अच्छा चले फिर, तो मैंने यहाँ से तो वो दूर है, पामने में चला जाऊँगा इस तरह करके, तो खैर मैंने सोचा कि किस तरह हेल्प की जाए, रमज़ान था तो इसलिए रोज़े का भी टाइम करीब था। एनीवे मैंने कोशिश की उनको, लेकिन वो खैर कहते हैं चलें ठीक है कोई बात नहीं, मैं कहीं और से देख लूँगा, मैंने उनको दोबारा ऑफ़र किया कि आप ले जाएं इसको या मैं ख़ुद ले आता हूँ पेट्रोल। उन्होंने खैर नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं उस ज़माने में अकेडमी ज्वाइन किया करता था, तो अकेडमी में कोई लड़के होंगे जिनके वो कोई दोस्त होंगे, एक दिन अकेडमी से बाहर निकले हैं, को एजुकेशन होती थी अकेडमी जितना होती हैं, बाहर निकले ना तो वही बंदा वही लड़का सामने आया हुआ था, बाइक के ऊपर से बैठा हुआ है, ज़ाहरी बात है डैश मारने के लिए बैठा हुआ था। तो मुझे देख लिया, मैंने उसे उन्हें देख लिया, वो आया कि मुझसे मिले और बड़े अच्छे तरीके से मिल मुल के ना, फिर थोड़ी देर में से भी बात करता रहा कि ऐसा पेट्रोल आपको मिला कि नहीं मिला, और उसने करके बातें कर करके चला गया। उसको देख के ना मुझे वाक्य हो गया, उसके बाद अकेडमी में मैं बड़ा पसंद किया जाना लग गया कि यार इसके कोई दोस्त है, वो क्या फिट बंदा था और उसके पास वो बाइक है। तो मुझसे आगे कितने लोग आए जो आगे पीछे सलाम नहीं करते थे, वो भी आके ये आपके जानने वाले हैं, कौन है, आपके दोस्त हैं। तो ये इस कदर दूर की चीज़ जो होती है, इस कदर दूर की चीज़ उसके ऊपर इतनी अट्रैक्शन हो रही होती है। कोई गाड़ी इस तरह देख लें, कोई चीज़ देख लें, तो लोग आगे पीछे चल फिर रहे होते हैं कि यार ये क्या ज़बरदस्त वो चीज़ खड़ी हुई है। बल अनआम और जानवर, अब जानवर भी उस हिसाब से, उस ज़माने के हिसाब से जो एसेट्स काउंट होते थे, खेती और जानवर के हिसाब से काउंट होते थे, फिज़िकल एसेट्स के हिसाब से। खैर ये आजकल के हिसाब से भी है कि जिस तरह मिसाल के तौर पर कि जब ये इन कंपनीज ने शुरू करना था, ये जो प्रेमा दूध और अनहार और इन सब ने जानवर कहाँ से लेके आए हैं, ये इन्होंने इंपोर्ट किए ऑस्ट्रेलियन काउज मिल्क और बाहर के जो हैं। इसी तरह ये जो KNN चिकन और ये जिस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये चिकन की ख़ास ब्रीड होती है ना, वो इम्पोर्ट करते हैं। इनकी जो छोटी एज के यानी कि 1-2 डेज के जो चिक्स होते हैं वो इम्पोर्ट होते हैं प्रॉपर। इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल बुल, वो उसकी पिक्चर भी थी, अच्छा खासा बड़ा तगड़ा किस्म का बैल था वो, और उसके ऊपर जो था मोस्ट एक्सपेंसिव, क्यों कि अगर कोई चाहता है कि इसके साथ मेटिंग करवानी है तो $3,000 चार्ज करता है वो बंदा, $3,000 चार्ज करता है कि ये इतने ज़बरदस्त नस्ल का और बहुत ही यानी कि काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म का देखने में था वो बुल। तो वो जानवरों की वैल्यू अभी भी है जिन लोगों के अंदर इस चीज़ की वैल्यू होती है। अब मिसाल के तौर पे एक शौक होगा खासतौर पर अरबों के अंदर, अगेन ये बहुत बड़ा शौक है फैल्कन्स का, कि उन्होंने इस चीज़ को रखते हैं पालते हैं, फिर उसका उनको उनकी पस परवाज़ देखेंगे वो, तो किसी और नौयत के अतबार से, लेकिन अभी भी है। फिर जिनका काम ही है एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड, उनके लिए तो ये चीज़ें वैल्यूएबल हैं ही हैं। आजकल के अतबार से क्या हम कह लेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं बहुत बड़ी बड़ी, और जिनके स्टॉक मार्केट के अंदर भी जिनके शेयर्स फ्लोट हुए हुए हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एट्रैक्टिवनेस पैदा करती हैं जाके, कि इसकी तरफ जो है वो जीनत और इस चीज़ का मिलान होगा। आपका दो जगहों के ऊपर इंटरव्यू होता है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, दोनों कंपनीज आपको बिल्कुल सेम पैकेज ऑफर कर रही हैं। एक कंपनी जो है वो एक लोकल बंदे ने खोली है, सिंपल सा जो है ना, जिस तरह उसका उसके अंदर डेकोर जो है वो बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह कि एक आम दफ्तर का होता है, कि मेज़ कुर्सी लगी हुई है, कंप्यूटर लगा है, या आपका एनवायरनमेंट होगा वर्किंग एनवायरनमेंट, बेशक ऐसी लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ आपको कोई बहुत बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, जिसका ऑफिस के अंदर इस कदर स्टाइलिश ऑफिस है उनका, और इस कदर उन्होंने चीज़ें वो रखी हुई हैं, दोनों सेम पैकेज दे रहे होंगे, आपका मिलान किस तरफ जाएगा, उसी कंपनी की तरफ, पैकेज बेसिक सेम ऑफर कर रहे होंगे दोनों, लेकिन दूसरी कंपनी की तरफ जाएगा क्या, उसका कितना ज़बरदस्त किस्म का उसका सेटअप है ऑफिस का। तो इस चीज़ की जो मोहब्बत है, इन तमाम चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह ताला के ने ये डाली है हमने। सूरह कहफ की एक आयत जो मैं बहुत दफ़ा कोट करता रहता हूँ, तो उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने क्या कहा हुआ है, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ ज़ीनतन लहा, ज़मीन और इस ज़मीन के ऊपर जो कुछ भी है अल्लाह ताला ने उसको ज़ीनत बनाया है, उसके ज़रिए सजाया है इसे, लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। अब ये मोहब्बत डाल दी है, इस कदर अट्रैक्टिव चीज़ डाल दी है ताकि हम आजमा सकें कि उनमें से कौन होंगे जो फिर भी नेक अमल करेंगे, इसी में पागल नहीं हो जाएंगे, गुम नहीं हो जाएंगे, फिर भी नेक अमल करेंगे। इन में से कोई एक चीज़ भी बुरी नहीं है, असल के अतबार से इनमें से कोई एक चीज़ भी बुरी नहीं है। जो पहली वाले जो पॉइंट है उसके बारे में मैं वजाहत कर देता हूँ, एक हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही मुस्लिम की हदीस है 36:49, अद्दुनिया मताउन, दुनिया जो है वो अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं उसकी चीज़ है, व खैरु मताउ दुनिया, और इस दुनिया की जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, एक तो नेमत वो है ना जो हमें अल्लाह ताला ने ज़ाती तौर पर दे दी, सबसे बड़ी नेमत ईमान है, फिर सेहत है, लेकिन जो बाकी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं उनमें सबसे बड़ी नेमत क्या है, ये तमाम चीज़ें भी हैं सब कुछ है, इन तमाम में सबसे टॉप की चीज़ क्या है, मरअतु सालिहा, एक बहुत नेक साले औरत या लड़की, किसी भी रूप के अंदर नेक साले लड़की या औरत, इन तमाम चीज़ों में सबसे बेहतरीन चीज़ जैसे रसूल अल्लाह ने कहा है वो होगी। उसकी एक्सप्लेनेशन बाद में किसी और क्लास के अंदर होती रहेगी। बेटों के बारे में क्या है, रसूल अल्लाह की एक हदीस है कि तीन आम ऐसे हैं जो इंसान के मरने के बाद भी जारी रहते हैं, कोई इल्म ऐसा जो वो दे के चला गया और जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा हो, कोई सदका जारिया का काम ऐसा जो वो करके चला गया हो कि उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हों। मिसाल के तौर पर किसी ने हॉस्पिटल खोल दिया था, किसी मस्जिद में पैसे लगा दिए थे, कोई शेल्टर कोई था वहाँ पे पैसे लगा दिए थे उन्होंने, या कोई पब्लिक वॉशरूम में क्यों नहीं था वो बनवा दिया या उसके अंदर पैसे लगा दिए, जब तक लोग उसे इस्तेमाल करते रहेंगे उसका अजर सवाब उसे मिलता रहेगा। या इल्म ऐसा जो छोड़ के चला गया हो, नंबर टॉप के ऊपर तो हमेशा ये दीन का इल्म ही होगा, बाकी दुनियावी सब्जेक्ट्स भी डेफिनेटली हो सकते हैं। और आखिर में बताया और नेक साले औलाद, ख़ास तौर पे वो जो उसके हक़ में फिर दुआ भी करती हो अपने माँ बाप के हक़ में। ये पहली दो चीज़ें जो हैं ये इंसान जितना छोड़ के गया था ये उतना ही रहेगा, जितना इल्म दे के गया था उसको उसके हिसाब से सवाब मिलेगा, जितना सदका जारिया का काम करके गया था वो बढ़ नहीं रहा। औलाद वो वाहिद सदका जारिया होगा इंसान का जो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। हदीस के अंदर ये भी आता है कि जो इंसान फौत हो गए उनको जो मकाम मिलना था मिल गया, नेक लोगों की बात हो रही है जिनको जन्नत में और बुलंद मकाम जो मिलना था मिल गया, लेकिन उसके बाद उनको जो है ना एक दर्जा और बुलंद मिल जाता है, उनको कुछ और नेमतें इनाम गिफ्ट ताकि दिए जाते हैं। वो पूछते हैं अल्लाह ताला जो मेरा हिसाब था उसके हिसाब से आपने मुझे दे दिया, अब ये क्या है? तो वो बताया जाएगा ये जो तुम्हारी औलाद है ना उसने आज ये काम किया खैर का, उसके ज़रिए से तुम्हें ये मिल रहा है। तो पहली चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने जो मता की चीज़ें थी उनके अंदर बेहतरीन चीज़ उसको करार दे दिया, इसी तरह यहाँ पे अल्लाह ताला ने बेहतरीन चीज़ करार दे दिया औलाद को, बेहतरीन सदका जारिया वो होगी जो औलाद होगी जो उसके बाद इंसान के बाद भी नए काम करते रहेंगे। और बेटे के अंदर भी इसमें कोई शक नहीं है कि एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए ज़्यादा जो फ्रीडम होता है कुछ करने का कुछ डिसाइड करने का वो हमेशा लड़के के पास ज़्यादा होता है, लड़की जो होगी वो हमेशा इफ्स एंड बट्स के साथ उसकी चीज़ चलेगी। मिसाल के तौर पर जॉब करनी है, लड़का जो होगा वो इंडिपेंडेंटली सोच सकता है, लड़की ने देखना है कि वहाँ तक कोई छोड़ के जा सकता है कि नहीं जा सकता, वहाँ तक पॉसिबल है कि नहीं है, इफ्स एंड बट्स शामिल होंगे। बाकी सोना और चांदी और ये जो कुछ भी है इसके बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया है एक साले बंदे के लिए, साले मोमिन के लिए साले माल और दौलत बहुत ही खूब चीज़ है। एक बंदा भी नेक हो और उसके पास खूब माल भी हो, हलाल माल हो, खूब चीज़ है, क्योंकि अब उसने बहुत खूब तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। असल के अतबार से इनमें से कोई चीज़ भी नहीं है जो कि हम कह सकते हैं कि ये चीज़ बुरी है, इनका सिर्फ ये है कि इनको हलाल तरीके से हलाल हराम की तमीज़ करते हुए और आखिरत का रुख करते हुए, लेकिन क्योंकि इसमें धोखे में पड़ जाते हैं तो अल्लाह ताला वजाहत कर रहे हैं ज़ालिका, ये सब कुछ जो है ये मताउल हयात दुनिया, ये बस दुनिया की चीज़ें थी, ना तो वो उस औरत ने साथ जाना है, ना औलाद ने साथ जाना है, ना सोने ने, ना चांदी ने, ना उन जानवरों ने, ना उस खेती ने, उनमें से कोई चीज़ सामने नहीं जाएगी, ये दुनिया की चीज़ें हैं। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब, अल्लाह ही तो है जिसके पास बेहतरीन बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा हसीन अजर है, ठिकाना है अल्लाह ताला के पास। एक बंदे की एग्जांपल आप ये इमेजिन करें कि बिलफर्ज एक बंदा है वो कहीं ट्रांजिट के ऊपर उसको कहीं जाना पड़ा था, कहीं फ्लाइट थी, कहीं गए थे, एक होटल के अंदर स्टे करवाया, एक से दो दिन के बाद आपकी नेक्स्ट फ्लाइट थी, एयरलाइन ने बंदे को दे दिया एक रूम दे दिया, अब बाकी वो जाए जहाँ मर्जी जाए, बिलफर्ज दुबई में वो उसको उतारा गया था, अब वो घूमे फिरे दो दिन जाके जो मॉल्स वगैरह हैं वहाँ पे भी चला जाए, घूमना चाहता है देख लें, क्या चीज़ होगी बंदा जब मॉल्स में जाके घूमे फिरेगा वो क्या चीज़ें ख़रीदेगा? अपने ज़ात की चीज़ें, अपने घर की चीज़ें वही ख़रीदेगा ना, कोई घर की चीज़ उसने देख ली, ये क्रॉकरी बहुत अच्छी है, ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ बहुत अच्छी है, इस तरह की चीज़ें वो देखेगा, किस चीज़ को नज़र जहन में किस चीज़ को रखेगा? अपने घर को, ये मेरे बेडरूम के लिए है, ये मेरे घर के लिए है, ये मेरे फलाने रिलेटिव के लिए है जहाँ पे मैंने जाना है एक्चुअली। और वो बंदा कितना बेवकूफ़ होगा जो कि अपना पैसा लगा रहा है, खर्च कर रहा है अपने उस होटल रूम को सजाने के लिए कि इस कमरे में ये लाइटिंग इस तरह की है, मैं एक लैंप ले आया था इस चीज़ के लिए, ये चेयर कम्फर्टेबल नहीं है, मैं ये वो फलानी चेयर खरीद के ले आया हूँ अपने रूम के लिए, ये नई डस्टबिन है, ये वॉल हैंगिंग होगी उसके लिए, वो टीवी इतना छोटा था ये मैं बड़ा टीवी ले आया हूँ अपने कमरे के लिए। हाउ स्टूपिड ऑफ हिम, वो जाए जाए कि ये जो फ्लोर कारपेटिंग है ना, या ये मैटिंग है, या वो जो वुड फ्लोरिंग होती है वो करवाना शुरू हो जाए. हाउ स्टूपिड ऑफ हिम कि वो बंदा कह रहा है तुमने अभी तो चले जाना है यहाँ से, तुम क्या यहाँ पे खर्च कर रहे हो. कितना बेवकूफ़ होगा वो बंदा कि एक बंदा जो टेम्प्रेरी जहाँ पर ठकाया हुआ है आपको कि यहाँ पर बस दो दिन की बात है उसके बाद चले जाएंगे, उसका उस चीज़ के अंदर वो इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाए. इसी तरह ही आप लोग अगर किसी वक्ती कहीं किसी जगह के ऊपर जाते हैं, आप लोग उस चीज़ के अंदर कितनी अपनायत फील करेंगे. कहीं थोड़ी देर के लिए अगर आप लोगों को स्टे करवाना पड़ जाए कि थोड़ी देर आप लोग इस जगह पे बैठ जाएं, आप लोग उसकी झाड़पूंछ करना शुरू हो जाते हैं, सफाई करना शुरू हो जाएंगे आप उसकी. कहीं पर आपको इस तरह ट्रांसलेट करवाया जाए आप क्या करेंगे, कोई भी इन चीज़ों में कोई चीज़ इंटरेस्ट नहीं होगी, दिलचस्पी नहीं लेंगे इन चीज़ों के अंदर. कोई चीज़ ख़राब भी होगी ना तो होती रहे ख़राब, मैंने कौन सा यहाँ पर रहना है, ये कौन सी मेरी अपनी चीज़ है. असल में प्रॉब्लम यह है कि हम जैसे लोगों की यही मिसाल है कि जो वक्ती तौर पे हमें चंद दिनों के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे दुनिया में भेज दिया है, हम इसको सजाने के ऊपर लगे हुए हैं, हम उस चीज़ को सजा रहे हैं, बना रहे हैं जो चीज़ हमारे हाथ नहीं आने वाली. अभी जो दो हफ्ते पहले क्लास नहीं हो सकी थी, फ्राइडे को मैं नहीं आया था और वो एक रिलेटिव की डेथ हुई थी, कहने को तो दूर का रिश्तेदार रिश्ता ही बनता है कि मामू ही है वो, लेकिन क्योंकि बचपन से वो साथ रहे हुए हैं तो इसलिए वो ख़ास किस्म के फीलेशन थे. तो अब उन्हीं की चीज़ों के ऊपर कर रहा था, गौर कर रहा था कि वो अपनी गाड़ी किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे, अपने बेटे को भी नहीं कि नहीं ये तुमने नहीं चलानी. जब कोई मेहमान आते हैं तो बंदा ड्राइंग रूम में कितना कॉन्शियस हो जाता है कि उनसे कोई चीज़ गिर ना जाए, कोई सोफे के ऊपर बिलफर्ज को ड्रिंक्स दिए हैं मेहमानों को और वो ड्रिंक्स गिरा दें सोफे के ऊपर ही, तो कितना गुस्सा चढ़ेगा, कितनी तब चढ़ेगी कि यार ये क्या कर दिया उन्होंने, सारा मेरा खराब करके रख दिया सोफ़ा. बेशक बाद में कोशिश भी करवा ली, लेकिन दिल के अंदर एक होगा कि यार क्या क्या हरकत कर दिया उन्होंने. या कोई और घर की ऐसी चीज़, तमाम चीज़ें जिनके ऊपर इंसान कितना केयरिंग हो जाता है. जब मेहमान ज़्यादा आए हो, मेहमान जाते हैं तो कितना होता है कि सफाई करो पूरे घर की, अब ए टू जेड करना शुरू करो. अब वो चले गए दुनिया से, अब उनकी घर की और वो तमाम चीज़ें एक्सपोज खुली भी पड़ी हुई हैं, उनकी गाड़ी कभी कोई इस्तेमाल करके लेके जा रहे हैं, कभी कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, घर के अंदर मेहमान आ रहे हैं, अब कोई केयर नहीं है कि कौन जूते पहन के कारपेट पर आ रहा है, कौन जूते के बगैर आ रहा है. जो उन्होंने रूल्स बनाए हुए थे घर, कौन उस रूल्स को फॉलो कर रहा है. वो एग्जैक्टली ये हाल होगा कि जब मैंने मरना है तो अभी तो मैं बड़ा कॉन्शियस होऊंगा कि मेरा मोबाइल किसी के हाथ ना लगे, मेरा लैपटॉप, बाद में किसी और के हवाले होगा ये चीज़ें. तो उसी तरह ही कहने को एग्जांपल कितनी अच्छी है ये वाली कि ट्रांसलेट के लिए गया तो कौन बेवकूफ़ होगा जो अपने कमरे को सजाएगा. हम वही बेवकूफ़ हैं जो अपनी इस दुनिया को सजाने पर लगे हुए हैं, हम वही बेवकूफ़ हैं जिसने प्रायोरिटी अपनी इस दुनिया को ही रखा हुआ है, आखिरत टूटे लाइन लगाया हुआ हमने उसे, बिल्कुल ही दूर की चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है कि वो तो पता नहीं आती है कि नहीं आती. अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा मेरे कंधे से मुझे पकड़ा, जैसा जिसके साथ कोई अपनाइयत होती है, कोई बात करनी हो तो उसके ऊपर कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं या उसको उसके फीलिंग दी उसे, और फरमाया, ये सही बुखारी की किताब रिकाक की हदीस है, रिकाक कहते हैं दिलों के नरम करने को, 64:18, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब उन, दुनिया में बिल्कुल इस तरह रहना जिस तरह कि तुम अजनबी हो, तुम्हारे ज़्यादा जानने पहचानने वाले लोग नहीं हैं. आओ आबिर सबील, या जिस तरह एक राह चलता हुआ मुसाफिर होता है. ये दो चीज़ें बता दें कि दुनिया में अगर कामयाबी हासिल करनी है आखिरत के अंदर, इन दो तरीक़ों से रहना है. इस एग्ज़ाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं कि बिलफर्ज आप किसी एक जगह से जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, लोकल बस में आप जा रहे हैं, वो आपका ट्रैवल किस तरह का होगा, खामोश सा होगा. ये तो नहीं हल्ला गुल्ला लतीफ़ा सुना रहे हैं, अगला बंदा कहेगा भैया तुम अभी फ्री हो रहे हो मेरे साथ, ना जान ना पहचान है, अभी तुम मेरे साथ लगे हुए हो, या उसको आप छेड़ रहे हैं, ये तो नहीं होगा ना. वो किस तरह का ट्रैवल होगा, बिल्कुल जो बोर होकर जा रहे होंगे, या अपना कुछ आपने हेडफोन में लगा प्ले कर लेंगे कि चलो ये सुनते हुए जा रहे थे, बिल्कुल खामोशी के साथ जा रहे होंगे. रास्ते के अंदर अगर कहीं रुकना पड़ जाता है किसी वजह से, फाटक बंद है, गाड़ी का फ्यूल चेंज होना है, या बिलफर्ज ये कि आप जैसा अगर लाहौर जा रहे हैं तो डेबू जो बस हो गई है वो 15 मिनट के लिए रुकती है, अब 15 मिनट में आप क्या करना शुरू हो जाएंगे वहाँ पर आके, क्या करेंगे आप जाके, ज़्यादा कोई बंदा जाता है ड्रिंक लेके आ जाता है बस वो. अब ये तो नहीं ना कि वहाँ जाके कोई दोस्तियाँ लगाना शुरू हो गए हैं आप, या वहाँ जाके आपको लंबी लंबी शॉपिंग करना शुरू हो गए हैं कि ये भी मैं ले लेता हूँ और ये भी होगा. आपको पता है कि जहन में चीज़ खटक रही है कि आप 15 मिनट का टाइम है मेरे पास और इतनी देर हो गई है, बार बार घड़ी को देख रहे होंगे अब इतना टाइम है. आप अपना जहन जो है उसको एंकर किए हुए हैं उस बस के साथ, वो बस मेरी नहीं छूटनी चाहिए किसी तरह भी. बाकी जो जो कुछ भी है वो आप उन ऊपर ऊपर से जाहिर ही देखेंगे, वहाँ पे किसी चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, कि इस चीज़ में मैं इन्वॉल्व होता हूँ या ये मैं ये काम करता हूँ, बस 15 मिनट जैसे टाइम पूरे होंगे मैंने चलना है। तो जो उस तरह का सफ़र होगा, इस तरह की अपनी गहराई रखना उसके अंदर। अब जब वो बस आपने गुजर गया, आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच गए, आप ऐसे सब ने ट्रैवल किया हुआ ना, इस तरह सब ने किया हुआ ना ट्रैवल, इस तरह आपको कोई याद है कि आपके साथ कौन कौन लोग बैठे हुए थे, आपको उनमें से किसी एक बंदे में कोई दिलचस्पी हो, या ट्रेन की सीट के ऊपर आपको बड़ी दिलचस्पी हो, पता नहीं उसका कारपेट किसी ने ख़राब तो नहीं कर दिया, सीट तो नहीं ख़राब हो गई, पता नहीं कौन कमबख्त बैठा होगा उसके ऊपर, आपको कोई इंटरेस्ट होगा उन चीज़ों में। तो यही है कि बिल्कुल जिस तरह दुनिया में इस तरह रहना कि जिस तरह तुम स्ट्रेंजर हो, और तुम्हारे लिए हर चीज़ स्ट्रेंजर है, हर चीज़ स्ट्रेंज है तुम्हारे लिए, कि तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, ये वक्ती है, या जिस तरह के एक राह चलता हुआ मुसाफिर। तो ये जोहद है, जहाँ पे जीनत का लफ्ज़ है इसका ऑपोजिट वो क्या है, जीनत का लफ्ज़ क्या होता है, अट्रैक्टिवनेस टुवर्ड्स ये दुनिया की चीज़ों की तरफ। जोहद क्या होता है, दुनिया की चीज़ों से बेरगबती, इंटरेस्ट ही ना होना है दुनिया की चीज़ों के अंदर। गाड़ी का कोई नया मॉडल आ रहा है तो आता रहे, कोई वॉल्यूम नया शुरू हो गया किसी कपड़ों का तो होता रहे, इस तरह की तमाम चीज़ें अगर जो कुछ भी है उस चीज़ के अंदर कोई दिलचस्पी ना लेना, ये होगा फिर कामयाबी का रास्ता। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो स्टूडेंट्स बाद में आए हैं, काफ़ी लेट में आए हैं, कि तमाम चीज़ें जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर किया हुआ है, इन तमाम की मोहब्बत अल्लाह ने डाली है। अगर मोहब्बत ही ना डाली होती, जिस तरह मैं कह रहा हूँ मिट्टी पड़ी हुई है तो पड़ी, हमें क्या लगे कि मिट्टी पड़ी हुई है। इसी तरह ही अगर ये अपोजिट सेक्स है कोई होता हो, लड़की हो, क्या लगे कि वो कौन है, बेटों की मोहब्बत हो गई या सोना चांदी या इनकी मोहब्बत डाली ही ना होती अल्लाह ताला ने सिरे से, फिर तो कोई इशू ही नहीं था। लेकिन तब लाइफ भी ना चल सकती इस तरह, जिस तरह कि आप चल रहे, लोग शादियाँ ही ना करते सिरे से, लोग उस चीज़ को प्लान ही ना उस तरह करते, अगर इन चीज़ों की अट्रैक्शन मोहब्बत ना डाली होती अल्लाह ताला ने, डाली है, अब इसके ज़रिए आजमाया, अब देखना यह है कि हलाल का रास्ता अख्तियार करता है इंसान या हराम का ज़रिए अख्तियार करता है, और जो चीज़ें भी हैं उसके अंदर भी क्या करता है, वो उसको हलाल में लगाएगा, ख़ासतौर पर चीज़ों से अंदर ये माल या औलाद उसकी बात कर रहा हूँ, हलाल में उसको वक्फ करता है या उसको हराम में लगाता है। औलाद के हिसाब से एक पैमाना है जो कि डॉक्टर शाह अहमद के लेक्चर के अंदर था, और वो बेहतरीन अल्फाज है इस चीज़ को जांचने के लिए। आपने अपने आप को जज करना है, अपने पेरेंट्स को जज करना है कि वो कितने दुनियादार हैं और कितने दीनदार हैं। उसका सिंपल टेस्ट पता क्या है, आप एवेल्यूएट करके देखें कि आपके पेरेंट्स आपको किस काम के लिए तैयार कर रहे हैं, आखिरत के लिए तैयार कर रहे हैं या दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं, और किस रेशो में कर रहे हैं तैयार। आपको आंसर मिल जाएगा कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो कितने दीनदार हैं और कितने दुनियादार हैं। यही सवाल अपने आप से भी फिर पूछना है जब आपका वक्त आएगा, उस एज पर पहुँचेंगे कि आप कितने हैं। इंसान खुद जो मर्जी करता है, मस्जिदों में जा रहे कुछ कर, लेकिन अगर अपने औलाद को कुछ नहीं कह रहा वो कि तुम भी नमाज पढ़ा करो, या ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, या इस तरह के लोगों से दोस्ती ना रखो, या ये जॉब हलाल है या हराम है, या बैंक की चीज़ों से उसको नहीं रोक रहा या कुछ, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा जो है उसके अंदर जो बैठा हुआ है ना, बिल्कुल जेन के अंदर बैठा हुआ है, वो दुनियादारी बैठी हुई है। ये तो अब उस एज तक चला गया, इसलिए वो बज़ाहिर नमाज़ें और वो चीज़ें शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर डिज़ायर्स, वो तमाम चीज़ों के ऊपर मैंने बात करनी है, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के पर्सनल क्वेश्चन को कवर कर लेगा। तो उस क्लास को कोशिश करना कि टाइम पर आएँ और मैक्सिमम स्टूडेंट्स आके उस क्लास को अटेंड करें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।